ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 19। अध्याय का नाम है जम्मू द्वीप का वर्णन और श्लोक संख्या 24। आप हमारे पीछे दोहराएंगे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। इसको इधर रखो, प्रणाम कर लेता हूं। सुरेश लोको अपि न वै सेव्यता। शब्दार्थ न, नहीं, यत्र जहां, वैकुंठ कथा सुधा आपगा, समस्त चिंताओं को दूर करने वाले श्री वैकुंठ अर्थात भगवान की अमृतमय धारा के समान कथा, न तो साधव भक्तजन भागवताह भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर, तत आश्रया भगवान की शरण में गए, न नहीं यत्र जहां यज्ञ ईश मखा यज्ञों के स्वामी के प्रति की गई भक्ति महा उत्सवाह जो वास्तविक उत्सव है सुरेश लोकह स्वर्गवासियों का स्थान अपि यद्यपि न नहीं वै निश्चय ही सह उस सेव्यताम सेवनीय। अनुवाद और तात्पर्य अवै चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रभावित नहीं होती और जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहां संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती, क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल के नदिया जिले में हुआ जहां नवदीप स्थित है। अतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक यह पृथ्वी लोक है और इस पर भी भारतवर्ष स्थित है। भारतवर्ष में भी बंगाल है जो इससे भी उत्तम है। बंगाल में भी नदिया जिला उससे भी उत्तम है, और नदिया में नवदीप धाम के सर्वोत्तम है, अर्थात उससे उत्तम और कोई नहीं है, क्योंकि यहां श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए हुआ था। शास्त्रों का मत है कृष्ण वरणम त्वसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सदैव ही उनके पार्षद तथा श्री नित्यानंद, श्री गदाधर तथा श्री अद्वैत एवं श्रीवास जैसे अनेक भक्त रहते हैं। वे सदैव भगवान नाम का कीर्तन और श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, इसलिए भारतवर्ष विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जहां भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है वो स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम घरों में भी हरिनाम करते हैं तो घर भी एक वैकुंठ लोक बन जाता है, जहां भगवान का कीर्तन कथा होता है, वो वैकुंठ की तरह है, वो भी एक मंदिर की तरह है। हाँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में अपना केंद्र स्थापित कर रखा है, जिसमें लोग वहां जाएं और सतत चल रहे संकीर्तन यज्ञ के उत्सव में भाग लें। जैसा कि महासंस्कृत है यज्ञेश मखा महोत्सवा, तथा उन लाखों भूखे मनुष्यों को प्रसाद का वितरण कर सके जो आध्यात्म उत्कर्ष के लिए लालायित हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य भागवत में इस प्रकार की गई है, भले ही स्वर्ग क्यों न हो, यदि वहां श्री भगवान के यश प्रसार करने का प्रचार नहीं हो पाता, यदि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों का वहां चिन्ह नहीं मिलता और कृष्ण भावनामृत को प्रचारित करने वाले उत्सव वहां नहीं मनाए जाते, तो मनुष्य को ऐसे स्थान की कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो यही है कि सदा सर्वदा माता के गर्भ में ही वास करे। हाँ, सोच लो, ये तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, देवता लोग तो इसी के लिए तो रो रहे हैं कि देखो एक मनुष्य जो है किसी के लायक नहीं है, लेकिन कितने भाग्यशाली निकल गए हैं। इससे अच्छा तो यही है कि सदा सर्वदा माता के गर्भ में वास रहे, जहां कम से कम भगवान के चरण कमलों का स्मरण तो हो सकता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसे अदम स्थान में जन्म न लेना पड़े। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज का कथन है कि चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं, अतः जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन करता है वह अत्यंत भाग्यशाली है। ऐसा मनुष्य परम बुद्धिमान है, जबकि अन्य लोग भौतिक जीवन की अविद्या से ग्रस्त हैं। वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों का उल्लेख है उसमें संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 100 अश्वमेघ यज्ञों की भी तुलना संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती। सोच लो, एक अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तो मुश्किल है। लेकिन यदि आप संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल घर बैठे बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरी हरी। हाँ, चैतन्य चरितामृत के लेखक के अनुसार यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से करता है तो पाखंडी है और यमराज द्वारा दंडित होगा। अनेक मायावादी संकीर्तन यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ तथा अन्य शुभ आयोजनों के समान पवित्र कार मानते हैं, किंतु ऐसा मानना नाम अपराध है। मायावादी भले ही सोचें, ऐसा सोचें कि तो नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन तथा अन्य नामों का संकीर्तन कभी भी एक समान नहीं हो सकता। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्री युत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंग यते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणम्। यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाब पुत्रेति तन्मतया तर्वो अभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो यस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोयस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भूतैरमहद्वे यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकं सोलंकृष्ट भगवान वचांसि मे। सोलंकृष्ट भगवान वचांसि मे। अरे कृष्णा माफ करना, मेरा भी गला इतना क्यों कई दिन से खांसी कफ कितना, पहले तो एक दो तीन दिन में खत्म हो जाता, अब तो 15 दिन से बराबर ये सारी प्रॉब्लम, तो इसलिए गले की इतना बुरी तरह हालत खराब हुई है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हम धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। तो यहां हम वर्णन सुन रहे हैं जम्बू द्वीप का वर्णन। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तो जम्बू द्वीप में भी भरत खंड भारतवर्ष है और भारतवर्ष का हम जो है वर्णन सुन रहे हैं। तो भारतवर्ष के बारे में देवता लोग अपने उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं। देवता लोग इस भारतवर्ष के मनुष्यों के सौभाग्य को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और वो बोले कि देखो इस भारतवर्ष के मनुष्यों को देखो, अवश्य ही इन्होंने कुछ न कुछ यज्ञ किए होंगे, दान किए होंगे, व्रत तपस्याएं आदि किए होंगे, इसलिए तो इनको भारतवर्ष में जन्म मिला है। तो देवताओं ने सोचा कि हमने भी तो ये सब कुछ किया है, हम स्वर्ग में हैं तो स्वर्ग में कोई थोड़ी हंसते खेलते हुए स्वर्ग में पहुंच जाएगा, हमने भी दान किए थे, व्रत किए थे, तपस्या किए थे, तब जाकर के स्वर्ग मिला है। लेकिन इन भारतवर्ष भारतवासियों का जो है सौभाग्य देखो कि इन्होंने हमारी बराबर दान पुण्य नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इन पर हमेशा भगवान क्या रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और हम लोगों को देखो, इतना सब कुछ करके भी हमें क्या प्राप्त हुआ, स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ, और स्वर्ग लोक में भी फिर क्या भरा पड़ा है, भौतिक भोग भरे पड़े हैं। इन भारतवासियों को देखो, यहां भोग नहीं है लेकिन भगवान बड़े आसानी से इनको मिल जाते हैं, और हमारे यहां भौतिक भोग भरे पड़े हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भारतवासियों को तो बहुत कुछ मेहनत करना होता है, देवताओं को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब करा कराया हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी भजन नहीं हो पाता है। यही तो देवता लोग आश्चर्य कर रहे हैं और बोलते हैं, बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि देखो, फिर प्रश्न उठ सकता है कि भाई देवता लोग सोचे कि मान लीजिए हमें इतनी बड़ी आयु मिली, इतना बड़ा लोक मिला है, तो अंत में फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं इतनी बड़ी आयु मिल करके भी उसमें क्या फायदा क्या है हमारे लिए, इतनी बड़ी आयु मिलकर के भी हमें क्या फायदा है। क्षणायुषाम भारत युज्यो वरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनुष्यन संन्यस्य संन्यात भयं पदम हरे। बोलते हैं कि इन भारतवासियों को देखो, हम लोगों को तो इतनी बड़ी आयु मिली है, उतने ही हम भगवान से दूर हैं, और इन भारतवासियों को देखो बड़ी छोटी सी मच्छर जैसी इनकी आयु है, और वास्तव में स्वर्ग के वासियों की तुलना में हमारी आयु कैसी है, मच्छर की तरह है कि नहीं है। तो वो बोलते हैं कि देखो इनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन संन्यस्य संन्यास्त पदम भयम हरे, फिर भी देखो ये लोग कितने भगवान के चरण कमलों के पास में हैं, नजदीक हैं, और हम लोगों को इतनी बड़ी आयु मिलकर के भी हम क्या हैं, उतने ही भगवान के चरण कमलों से दूर हैं, इसलिए अपने दुर्भाग्य को वो लोग कोस रहे हैं। हालांकि स्वर्ग लोक में दो प्रकार के देवता रहते हैं, एक तो जो क्या नाम है अपना पुण्य कर्म करके और जाते हैं, लेकिन पुण्यों का कर्म खत्म हो जाता है तो रिटर्न आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और एक देवता जो होते हैं वो सृष्टि के शुरू से जाते हैं और सृष्टि के अंत तक वो लोग रहते हैं। तो इनमें भी जो है तारतम्यता चलती रहती है, उनमें भी कुछ ज्यादा जो पुण्य आत्मा है जो स्वर्ग मतलब हमेशा रह जो लास्ट तक रहने वाले हैं वो अपने को बड़ा गर्वित समझते हैं, क्योंकि उनको विषय भोग सुविधाएं फैसिलिटी माला इतनी बड़ी माला ये सब माला उनको बहुत दी जाती है, तो इसलिए वो जो दूसरे जो पुण्य करके जाते हैं उनको ज्यादा कोई सम्मान नहीं करते, वो बोलते वो सब क्या है हमारे सामने मच्छर की तरह भी नहीं है, तो उनसे वो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन वो देवता भी जब भारतवर्ष को देखते हैं, भारतवर्ष के लोगों को देखते हैं, तो उनसे अपने प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है कि वास्तव में हमसे तो कई गुना हजारों गुना लाखों करोड़ों गुना ये भारतवास के लोग धन्य है, जो कुछ ज्यादा पुण्य दान किए नहीं है लेकिन फिर भी भगवान के श्री चरण कमलों के बड़े पास में है। तो देवता लोग बेचारे अपना सौभाग्य को कोस रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम जो है अपने सौभाग्य को कोस रहे हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला, हमें फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी पोजीशन क्यों नहीं मिल रही है। जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर बैठे हुए हैं, जिनको एक बड़ा बड़ा एक ब्रह्मांड चलाने के लिए उनको डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, वो वहां बैठे बैठे रो रहे हैं, हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ जो है इस कृष्ण बलराम हॉल में बैठे बैठे यहाँ हम रो रहे हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिला, हमें जो है आगे बैठने के लिए क्यों नहीं मिला, हमको माला क्यों नहीं दी गई, वहां हम यहां रो रहे हैं। लेकिन हमें अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा, समझो कि हम वास्तव में कितने भगवान के क्लोज में हैं। थोड़ा सा हाथ पैर पटको और सीधे भगवान के धाम चले जाओ। तो देवता मानो देवताओं से पूछा, भाई तुम्हें और क्या प्रॉब्लम है, बस इतनी प्रॉब्लम है? बोला नहीं, और असली प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं। तो जो सही प्रॉब्लम है वास्तव में उनकी, तो ये आज के श्लोक में वो बता रहे हैं। तो बोलते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यता। बोलते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ यत्र न कथा सुधा पगा, अर्थात जतो यत्र वैकुंठ कथामृत नद्यौ न संति। बोलते हैं कि भाई इस भारतवर्ष में देखो इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना जो है सत्संग हो रहा है सर्वत्र, कि लोग अभी उसमें से चुनाव करते हैं कि किसी की कथा में बैठना है और किसी की में नहीं बैठना है, है कि नहीं है। यहां इतना वृंदावन में जो है इतनी कथा हो रही है कि लोग देखते हैं यहां का वक्ता कौन है, अरे वो है, छोड़ दो उधर छोड़ दो, उसमें कौन है, अरे वो भी नहीं है, ठीक नहीं, उसमें कौन है, हाँ चलो वहां चलेंगे। यहां इतनी कथाएं हैं भारतवर्ष के अंदर, वृंदावन में ही नहीं, आप चले जाओ सर्वत्र जो है, वृंदावन में जाओ, मायापुर में जाओ, द्वारकापुरी में जाओ, क्या नाम है, मथुरा में जाओ, हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, बनारस में जाओ, कहां कहां सर्वत्र कथाओं की बाढ़ आ रही है। इधर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। तो ये जो है वो उनको यही तो जो है सबसे बड़ी पीड़ा हो रही है, कि इन लोगों को देखो कितना इन लोगों को कथा की सुविधा दी है, कि ये लोग चैन करते हैं कि हमें किसी की कथा में बैठना है, और हम लोगों के हॉल इतने बड़े बड़े हॉल हैं कि जो खाली पड़े हैं, जिसमें कोई बोलने वाला तक नहीं है। इसलिए देवता बोल रहे हैं कि देखो एक बार हमें चांस मिला भी, और हम जो है जिस समय परीक्षित को सांप लगा था, तो हमें जब मालूम चला कि जो है सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, तो हम क्या किए, अमृत का कलश भर करके हम लोग दौड़े सभी कि चलो भाई उनका हम पेमेंट कर देंगे, उनको बोलेंगे तुमने कोई फ्री में नहीं सुनाया हमें कथा, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, हम आपको अमृत दे रहे हैं, आप हमें कथा दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वहां गए अमृत का जो स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएबल जो अमृत है वो भी लेकर के गए, कलश भर करके लेकर के गए हम जो है, लेकिन उसमें ये हमारा दुर्भाग्य था कि सुखदेव गोस्वामी ने हमें उसके भी योग्य नहीं समझा, और सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उनको देवताओं को फटकार लगा दी कि अरे देवताओं तुम जो है अमृत की तुलना कथा से कर रहे हो। तो बोलते हैं क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व कांच क्व मणि महान ब्रह्म रात्र विचारैव तव तदा देवान जहासह। अर्थात ब्रह्म रात्र विचारैव तदा देवान जहासह, सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं का मजाक उड़ा दिया, बहुत मजा उड़ा करके कहा, अरे देवताओं तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो सुधा है, क्वा सुधा, आपकी जो सुधा है वो किसके समान है? शीशे के टुकड़े के समान है। और जो कथामृत है वो किसके समान है? अमृत के समान है, सॉरी मणि के समान है। शीशे के टुकड़े के समान क्या है? देवताओं का जो सुधा है, अमृत है। और कथा किसके समान है? मणि, पार्श मणि के समान है। इसलिए अभक्ताय च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, स कथामृतम न ददौ, उनको जो है कथा नहीं सुनाई। क्यों? अभक्ताय स विज्ञाय, देवताओं को अभक्त समझ करके, कथामृत का पात्र नहीं जान करके उनको भजा दिया, बोलो भागो यहां से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रे देवताओं तुम इस अपने जो है सुधा पर इतना गर्व करते हो, तुम बोलते हो तुम क्योंकि उन्होंने कहा था, देवताओं ने कहा था कि देखो सुखदेव जी क्या करो, ये जो अमृत है आप जो है परिचित को पिला दो, और परिचित इसको पिएगा तो जो है तक्ष का आए उसको एक बार नहीं 10 बार काटे लेकिन फिर भी कुछ होगा नहीं। तो इसलिए परिचित क्या होगा, हमारे अमृत से बच जाएगा, और आप क्या करो, आप हमें कथामृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा, अरे वाह कितने आप लोग विद्वान हैं, अरे देवता हो ये व्यापार करने के लिए यही तुम्हें मिला। उन्होंने कहा, रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरु खोआ। बोलते हैं, आप इस सुधा का इतना प्रशंसा कर रहे हो, इससे अमृत हो जाएगा, अमर बन जाएगा, तक्ष के काटने से मरेगा नहीं, तो तुम क्या पीते नहीं हो उस अमृत को? बोला हाँ हम पीते हैं। तो पीते हैं, तो एक बार जब रावण वहां जो है गया, वहां क्या नाम है स्वर्ग लोक में, तो जब देवताओं को मालूम चला रावण आवत सुनेहु सकोहा, सकोहा मतलब देवता लोग, जैसे उन्होंने सुना कि रावण स्वर्ग में आ रहा है, तो देवन तके मेर गिरख हुआ, उसी समय सारे देवता लोग स्वर्ग लोक को छोड़ करके क्या किए, मेर गिरख हुआ, सुमेरु की कंदराओं में और गुफाओं में जाकर के घुस गए, भाई भाग लो यहां से, नहीं तो जो है हमारा मुश्किल हो जाएगा। सुखदेव जी ने उन देवताओं को यही समझाया कि तुम भी तो अमृत पीते हो लेकिन तुम तो मारे मारे फिरते रहते हो, तुम्हें किसका भय, जब अमर ही हो आप लोग तो फिर किसका भय लगता है तुम्हें, लेकिन जो कथामृत का पान करता है उसको कोई भय नहीं है। देखो नारद जी को देखो, नारद जी स्वर्ग में भी जाते हैं, असुर लोक में भी जाते हैं, मृत्यु लोक में जाते हैं, सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, काक भुसुंडी काक हैं, लेकिन आज तक वो कथा कह रहे हैं, उनको किसी का कोई भय नहीं लगा। चतुर कुमार जो है पूरा घूम घूम करके कथा करते रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी जो है कितने जो है प्रेमी है, कथा के प्रेमी है, उनको कोई भय नहीं है, किसी का भय नहीं है। शोक मोह भय उपहा, जो भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करता है उसका शोक और मोह और भय वो क्या होंगे, उपहा, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए तो गोपियां बोलती हैं, तब कथा अमृतम ताप्त जीवनम कभी भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरिदा जना, भुवि गृणन्ति भूरिदा जना, जो कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं और जो उसका वितरण कर रहे हैं, वास्तव में भूरिदा, भूरिदा का मतलब महादानी, अरे दानी तो और बहुत सारे हुए हैं संसार के अंदर, लेकिन महादानी बहुत बिरले हुए हैं। तो बोलते हैं कि जो इस कथा का पान कर रहे हैं और दूसरों को वितरण कर रहे हैं भूरिदा जना, वो कैसे हैं? भूरिदा। तो इसलिए तप तप जीवनम, जो संसार में जो है तप रहे हैं नाना प्रकार की समस्याओं से, कलेशों से, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जितने भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को एक इलाज, और वो भी रामबाण औषधि, वो क्या है? भगवान की कथाओं को सुना जाए। जिस समय 88,000 ऋषि मुनि प्रयागराज में कथा सुन रहे थे, लेकिन कथा के बीच में थोड़ा थोड़ा सा उनको क्या होता रहता था? डिस्टर्बेंस होता रहता था, क्योंकि वहां कुंभ लग रहा है, लोग स्नान के लिए आते रहते थे, तो इसलिए बड़ा उनको डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए इमेडिएटली उन्होंने देखा कि हमारी कथा में बहुत विघ्न हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, 88,000 ऋषियों ने भी क्या किए, प्रयागराज को छोड़ दिए, और प्रयागराज को छोड़ करके कहां आ गए? नैमिषारण्य के जंगल में आ गए, और वहां बैठ करके सब कथा सुने। भाई 88,000 के लिए कुकिंग वो सब, बोला कोई व्यवस्था मत करो। उन्होंने न कहीं जो है चूल्हे की व्यवस्था की, न कहीं जो है पंडाल लगाए, न गैस और कुछ खरीदे, बोले कथा सुनो, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। और सत्यता यह है कि उनकी जो है कभी भी वो भूखे या प्यासे के लिए कभी भी कोई भी जो है मरा नहीं, या जो है कहीं उन्होंने प्रयास नहीं किया, सारा का सारा भगवान की अपनी ऐसी व्यवस्था हुई को उनको समय के अनुसार सब कुछ मिलता था, मिल जाता था, वही मिल जाता था। और हम लोग कितनी टेंशन लेकर के हैं, जैसे घड़ी के 8 बजे नहीं कि तुरंत टेंशन बढ़ जाती है कि प्रभु कब बंद करे, और हम दौड़े जो हैं, बहुत से तो एक दूसरे की चप्पल पहन के चले जाते हैं क्योंकि वहां दिमाग तो वहां है, चप्पलों को कौन देखे किसकी है, बाद में देखेंगे जब प्रसाद पेट में पहुंच जाएगा तब देखी जाएगी। ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनो, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब काज मिले मन वांछित फल पाई, इह लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर साज सवई मिले है पर दुर्लभ संत समागम भाई। इसका मतलब समझे, सुनो, तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई है, मात पिता भी मिल सकते हैं, भाई बहन भी मिल सकते हैं, युवती सुखदाई पत्नी भी सुंदर मिल सकती है, राज मिले गजबाज मिले सब काज मिले मनवांछित पाई, राजा की पदवी मिल सकती है, हाथी घोड़े पलटन मिल सकते हैं, सब कुछ मन की इच्छा के अनुसार हर वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है, यह लोक है, ये भारत वर्ष मिल सकता है, सुरलोक देवताओं का लोक भी मिल सकता है, विधि लोक ब्रह्मा का भी लोक मिल सकता है, और जाने दो बैकुंठ उपाय बैकुंठ भी मिल सकता है, लेकिन सुंदर साज सभी मिले हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिल सकता? दुर्लभ संत समागम भाई, जो संत समागम जो है ये जो मिला है इसको शास्त्रों में दुर्लभ, बहुत ही बहुत रेयर कहा गया है, दुर्लभ कहा गया, ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो नारद जी बोलते हैं, संत सेवया दीर्घा जे जाता में धृणामती हित्वा बदम इमम लोकम गत्वा मंजनता असी। नारद जी बोलते हैं, अरे व्यास जी, ये उन संत महात्माओं की कृपा रही मेरे ऊपर, मैं तो एक दासी का पुत्र था, एक शूद्र जाति का जन्मा हुआ वो था, लेकिन ये उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि उनके संत समागम में मैं क्या करता था, जाकर के बैठ जाता था। और उसका ये परिणाम हुआ कि धीरे धीरे उस जो है संत समागम को सुनते सुनते उस जो है उनके मुखारविंद से भगवत कथाओं को सुनते सुनते क्या हुआ, मैं धृणामति जाता है, मेरी जो मति है वो भगवान के श्री चरण कमलों में क्या हो गई, धृण मतलब पूरी रूप से जो है लग गई, अर्थात मेरा मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से लग गया था। और उसका परिणाम यह हुआ हित्वा बधम इमम लोका, धीरे धीरे मेरे संसार का बंधन खत्म हो गया और गत्वा मंजन तासमी, और मैंने क्या किया भगवत धाम को भी प्राप्त किया। ये केवल सत्संग का ये प्रभाव, इसलिए तो देवता लोग तरस रहे हैं कि देखो धिक्कार है हमारे जीवन के स्वर्ग लोक में सत्संग नहीं मिलता है, यहां तो जो है घुंघरुओं के पायलों की झनकार मिलती है, वहां जो है कभी ये नहीं सुनाई देता कि श्री सुखदेव वाच परिचितो वाच, कभी भी सुनाई नहीं पड़ता। ये तो हम लोगों का सौभाग्य कि यहां सब कुछ ये सुनाई पड़ रहा है। ठीक है चलो सत्संग वाली प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला नहीं नहीं और भी प्रॉब्लम है, बोला और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं न साधवो भागवता तदाश्रया, बोलते हैं वहां कोई भक्त भी नहीं जाता है। एक बार अर्जुन भूल से वहां चला भी गया था, इंद्र ने जो है अपना आधा वो दिया था उनको, अपनी गद्दी राजगद्दी उनको बिठाया था उसके ऊपर, और उर्वशी से कहा था कि देखो उनको प्रसन्न करो उनको अमृत पिलाओ, तो उर्वशी बिचारी सर धज करके उनके पास गई भी थी, लेकिन क्योंकि चूंकि अर्जुन तो भगवान के भक्त थे इसलिए उन्होंने कहा हे माते आप ये सब क्या लेकर के आई हमारे लिए, और जैसे उन्होंने माता शब्द सुना उनका तो पसीना ही निकल गया, ये क्या बोल रहा है, यहां तो माता कोई जानता ही नहीं माता क्या होती है, ये क्या बोलता है, माता बोलता है मुझे, तुझे माता लगती हूं मैं बोलते है कि नहीं तुझे माता लगती हूं, तो बोलते वहां जो है एक है संत समागम नहीं है, दूसरा बोलते कोई भक्त भी नहीं जाते हैं। भक्तों के बारे में शास्त्रों में बताया जाता है सर्वे सर्व जो है ये है चैतन्य भागवत में श्री कृष्ण सॉरी वृंदावन चंद्र ठाकुर बोलते हैं सर्व वेदे पुराणो आश्रय मोरच्चा भक्तेर आश्रय मुई था कि सर्व भाय, भक्त ये ही अमार द्वितीया और नाय, भक्त मोर पिता माता बंधु पुत्र भाय, यद्यपि स्वतंत्र आमी स्वतंत्र विहार तथापि यो भक्त बस स्वभाव अमार। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं चैतन्य भागवत में है कि देखो भगवान बोलते हैं कि सर्व वेदे पुराणे आश्रय मूरचार, सारा संसार मेरा आश्रय चाहता है, लेकिन मेरा क्या है कि भक्तेर आश्रय मुई था कि सर्व भाय, और मुझे भगवान है बोलते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनका भक्त का आश्रय चाहिए, भगवान को क्या चाहिए किसका आश्रय चाहिए भक्त का आश्रय चाहिए, भक्त मोय अमार द्वितीया और नाय, भक्त के अलावा भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्त मोर पिता माता बंधु पुत्र भाई, मेरे भक्त ही मेरे पिता हैं माता है बंधु हैं और भाई हैं, यद्यपि स्वतंत्र आमी स्वतंत्र विहार, हालांकि मैं स्वतंत्र हूं मेरे ऊपर किसी का कोई शासन नहीं है, तथापि वो भक्त बस स्वभाव मार, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों के बस में रहना पसंद करता हूं। सुन लो ये भक्त की पोजीशन है, और यहां भक्त बनने से लोगों को शर्म लगता है, है अरे उसने भक्त बोल दिया मुझे, तुझे भक्त लगता हूं मैं, नहीं तुझे मैं तो जो है क्या कहे अब उसके बारे लोग तिलक लगाने में डरते हैं कोई हमें पंडित जी ना बोल दे पंडित जी राम राम होता है कि नहीं होता है, माला जो है जप करने से उनको शर्म लगता है, कोई बोले अरे भाई थैली में क्या है, अरे पंडित जी क्या जप रहे हैं ये लेकिन ये देखो भगवान हमेशा अपने भक्तों का सानिध्य चाहते हैं, इसलिए तो भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीनो ए स्वतंत्र एव द्विज साधु साधु भी ग्रस्त हृदय साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। दुर्वासा से बोलते हैं कि हे दुर्वासा जी, आप बोलते हैं कि आपका ये चक्र है आप बोल दो इसको कि भाई दुर्वासा जी को आप कष्ट मन दो, मैं बोल भी दूंगा, ठीक है आप बोलते मैं बोल भी देता हूं, लेकिन ये चक्र ने मेरा नहीं माना तो मेरी इंसल्ट होगी और आपकी भी इंसल्ट होगी, क्योंकि ये चक्र मेरी बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इस चक्र को किसको दे करके रखा है, अपने भक्तों की सेवा में लगा करके रखा है। इसलिए दुर्वासा जी यदि मैं बोलता हूं इस चक्र को भाई तुम इनको क्षमा कर दो, ये बिल्कुल भी मेरी सुनने वाला नहीं है, अब इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि तुमने जो है अमरीश है वो मेरा भक्त है, उनके चरणों पे तुमने अपराध किया है, इसलिए उनसे जाकर के कहो, वो बोलेंगे तो एक सेकंड में ये चक्र शांत हो जाएगा। और वास्तव में जैसे अमरीश महाराज ने स्तुति की कहे चक्र देवता यदि वास्तव में मेरा आपके प्रति भगवान के प्रति समर्पित भाव है तो आप शांत हो जाइए, बस एक सेकंड में कहां जो है प्रचंड अग्नि की तरह उनको जला रहा था अब बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ गया चक्र। ये भक्त की महिमा है और हमें भक्त बनने से शर्म लगता है, इसलिए तो देवता रो रहे हैं कि देखो ये भारतवासियों को जो है इनका फूटी कौड़ी के जो है 2 टके के नहीं है, लेकिन जो है कितने सारे जो है कहां कहां से आकर के भक्त बन गए हैं, ये सबसे बड़ी टेंशन उनको ये भक्तों से और ज्यादा और हो रही है उनको जिनका कुछ भी जो है पुण्य नहीं है लेकिन भक्त बन गए अब हमसे पहले वो चले जाएंगे, ये तो स्वभाव है निश्चित है। और क्या है ब्रह्म नारद पुराण में बोलते हैं यो विष्णु भक्तम निष्कामं भोजयेत श्रद्धयान्विता त्रिसप्त कुल संयुतम सयाति हरि मंदिरम। बोलते हैं जो भक्तों को भोजन कराता है यो विष्णु भक्तम निष्कामम भोजयेत श्रद्धान्विता श्रद्धा के साथ में तो उसका क्या फल है त्रिसप्त कुलम संयुक्तम। त्रिसप्त का मतलब 21 कुल उसके क्या होंगे सयाति हरि मंदिरम 21 कुल का उनका उद्धार हो जाता है, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। इसलिए जो है ये बता देते हैं कि भक्तों को भोजन कराना चाहिए बहुत से ने तो सोच ला हुआ कौन सा भक्त कम खाता है उसी को मैं देख लेते हूँ उसी को इनवाइट कर देते हूँ, कौन बनाएगा। और क्या बोलते हैं तो बोलते हैं सबसे बड़ी टेंशन है और वो बोलते हैं कि देखो यहां कोई भक्त नहीं, स्वर्ग में भक्त नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ सहारा मिला भी था हमें किन से उपेंद्र से बामन देव से, लेकिन बामन देव कहां घूमते रहते हैं कुछ मालूम ही नहीं चलता है। वो प्रभु जो है हमारे चलो भक्त नहीं है, जो भगवान यहां रहेंगे तो भक्त जरूर आएंगे वहां, लेकिन वो भी ज्यादातर कहां रहते हैं बलि महाराज के वहां चले जाते हैं, बस यहां तो एक ड्यूटी सी लगाई और भाग गए यहां से, चलो कोई बात नहीं दूसरी प्रॉब्लम तीसरी और कोई प्रॉब्लम है। बोला हाँ और क्या है न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा न यत्र यज्ञेश मखो, यहां जो है भगवान के जो है यज्ञ रूपी महोत्सवों को नहीं मनाता, संकीर्तन यज्ञ को नहीं कोई करता है, कोई नाम ही नहीं लेता है, यहां तो जो है उर्वशी क्या नाम है उनके अप्सरा है उनके मुखारविंद से बस फिल्मी टून के गाने सुन लो, किसी के मुख से जो है कीर्तन की आवाज नहीं निकलती है। तो संकीर्तन के बारे में बोलते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है सार स्वरूप जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि मैंने मायापुर में जो संकीर्तन आंदोलन के जो प्रवर्तक है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जन्मभूमि पर मायापुर में हमने क्या किया है, एक बहुत बड़ा जो है विशाल मंदिर का निर्माण किया है। किसके लिए? केवल इसी के लिए लोग आए और इस संकीर्तन आंदोलन में क्या करें, भाग लें और प्रसाद पाएं और प्रसाद लोगों को खिलाएं। बस यही करो और सीधे भगवान के धाम चले जाओ। हरे हरे है, कितना आसान है। इसलिए तो देवता बोलते हैं कि एक टेंशन हो ना तब हमारा जो है दिमाग ठिकाने पर है ना। कितनी सारी टेंशन लगी है, एक दो तीन नाना प्रकार की जो है समस्या पे है। तो संकीर्तन के बारे में सुनते हैं। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। ये भगवान के नाम समस्या पे है। तो संकीर्तन के बारे में सुनते हैं। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभो दय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। ये जो है ये क्या नाम चैतन्य भागवतम में दिया है नाम संकीर्तन